Iran Radio Podcast.
दोस्तों, जो पॉडकास्ट आप सुन रहे हैं वो ईरान रेडियो द्वारा तैयार किया गया है। अगर आप दूसरे विषयों पर भी पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट iranradio.ir/hi पर सुन सकते हैं। आज के एपिसोड में हम अमेरिका में अरब लॉबी और अमेरिकी समाज में उसकी स्थिति की बात करेंगे। अरब अमेरिकी शब्द उन अमेरिकियों को संदर्भित करता है जिनकी जड़ें मध्य पूर्व के अरब देशों से जुड़ती हैं। दोस्तों, अमेरिका में लॉबिंग पॉडकास्ट का ये छठा एपिसोड है। ईरान रेडियो से मैं हूं अहमद अब्बास, आप सभी को मेरा सलाम। अरब अमेरिकी 1880 के दशक में ख़ुद को शामी कहा करते थे। इसमें वर्तमान सीरिया, लिबनान, फिलिस्तीन, जॉर्डन और इराक शामिल हैं। उन्हें सीरियाई, लिबनानी, अरब और तुर्क के नाम से भी जाना जाता था। 1967 के बाद अमेरिकी अरब के रूप में उनकी नई पहचान बनी। ये अलग अलग नाम अमेरिका में अरब समुदाय की बदलती पहचान का सबूत है। दरअसल अमेरिका में 1965 में नए अप्रवासन कानूनों के पारित होने के बाद तेज़ी से जनसांख्यिकीय परिवर्तन हुआ। इन कानूनों के तहत भूमध्य सागरीय क्षेत्र के बाहर के क्षेत्रों और देशों के निवासियों को संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवासन की अनुमति मिली। इसने अमेरिकी अरब समुदाय की जनसांख्यिकी संरचना को बदल दिया। अमेरिकी अरबों को एक विविध समुदाय कहना चाहिए। इस समाज में पहले अप्रवासियों और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और विशेष रूप से 1967 के बाद इस देश में जाकर बसने वाले अरबों के बीच बहुत अंतर है। इसके अलावा अमेरिकी अरब धर्म, सामाजिक, आर्थिक स्थिति, गैर अरब अमेरिकियों के साथ मेल जोल और जातीय स्थिति में एक दूसरे से भिन्न हैं। फिर भी ये सभी लोग सामान्य पहलुओं जैसे अरबी भाषा, अरब संस्कृति और इस्लामी या अरबी विरासत पर गर्व करते हैं। इसी तरह नकारात्मक रूढ़िवादी रवैया, राजनीतिक अलगाव और भेदभाव अमेरिकी अरबों के बीच एक सामान्य स्थिति है और अमेरिका में अरब समुदाय के हाशिए पर जाने में इसकी बड़ी भूमिका है। अमेरिकी अरबों के हाशिए पर रहने के कारणों की कई पहलुओं से समीक्षा की जा सकती है। ये मुद्दा भी अहम हो जाता है कि उन्हें मीडिया, शैक्षिक केंद्रों, पाठ्य पुस्तकों में कैसे प्रस्तुत किया जाता है। उनके साथ भेदभाव उस समय और बढ़ जाता है जब मध्य पूर्व और ख़ासतौर पर फिलिस्तीनियों और इसराइलियों के बीच टकराव तेज़ होता है। इस बीच 2000 की अमेरिकी जनगणना के अनुसार अमेरिकी अरब कई मायनों में समग्र औसत से बेहतर स्थिति में है। उनके पास उच्च शिक्षा और आय है और वे व्यापार और पेशेवर नौकरियों के क्षेत्र में मजबूत स्थिति में है, लेकिन यह आंकड़ा पूरा सच नहीं पेश करता। उदाहरण के लिए, अरब अमेरिकियों के बीच गरीबी दर अमेरिकी औसत से अधिक है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सामान्य आबादी के 12.4% की तुलना में उनके बीच ये दर लगभग 16.7% है। युवा लोगों के बीच ये दर और भी ज़्यादा है। 16.6% सामान्य अमेरिकियों की तुलना में 22.2% युवा अमेरिकी अरब गरीब हैं। इसके अलावा विभिन्न मूल के अरबों के बीच भी अंतर है। अमेराकियों और फिलिस्तीनियों, विशेषकर 18 वर्ष से कम उम्र के नागरिकों के बीच गरीबी दर ज़्यादा है। अरब अमेरिकियों में सबसे कम साक्षरता इराकी अमेरिकियों के बीच है, जबकि मिस्र वासियों में साक्षरता दर सबसे ज्यादा है। इसके अलावा अरब आबादी करीब सभी अमेरिकी राज्यों में बसती है, लेकिन उनमें से लगभग दो तिहाई इस देश के 10 राज्यों में केंद्रित हैं। इन 10 राज्यों में से 3 राज्य कैलिफोर्निया, मिशिगन और न्यूयॉर्क हैं, जहां बड़ी संख्या में अरब अमेरिकी रहते हैं। कुल मिलाकर अमेरिका में अरब समुदाय कई कारणों से राजनीतिक और नीति निर्धारण स्तर पर वो हासिल नहीं कर पाया जिसकी उससे अपेक्षा की जा सकती थी। इन कारणों में विभिन्न मूल के अरबों के बीच एकता की कमी भी है। इसके अलावा समान मूल वाले अरबों के बीच भी एकता की कमी है। इन अरबों के बीच सामान्य अरब पहचान की तुलना में परिवार और कबीले की पहचान पर अधिक जोर है। अरबों की राजनीतिक भागीदारी में कमी या इस क्षेत्र में उनके प्रभाव के अन्य कारणों में हम अरबों की राजनीति से दूर रहने की व्यक्तिगत प्रवृत्ति का उल्लेख कर सकते हैं जिसकी ऐतिहासिक जड़ें हैं। अरब इस विचार के साथ अमेरिका पहुंचे और उसका आज तक असर उनके अंदर देखा जा सकता है। उनका मानना है कि अमेरिका में वे अस्थाई हैं और एक दिन वे घर लौट जाएंगे। इसी विचार ने उन्हें राजनीतिक गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने से रोके रखा। पिछली शताब्दी के दौरान अमेरिकी अरबों ने अपनी स्थिति में सुधार के लिए विभिन्न विरोध प्रदर्शन किए और अन्य विरोध प्रदर्शनों में अपनी भूमिका निभाई। उन्होंने दान संस्थाओं की स्थापना की जिनमें से कुछ बाद में प्रभावशाली समूह और राजनीतिक संगठन बन गए। इस समुदाय की सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में श्रमिक आंदोलन और उनकी हड़तालें और नागरिक अधिकारों की रक्षा का नाम मुख्य रूप से लिया जा सकता है। प्रथम विश्व युद्ध और उसके बाद के घटनाक्रमों के कारण सीरियाई अरब अमेरिकी समुदाय को विभाजनकारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ये चुनौतियां उन क्षेत्रों की स्थिति और सीमाएं निर्धारित करने से उत्पन्न हुई जो पहले उस्मानी साम्राज्य के अधीन थे और युद्ध के बाद मुक्त हो गए। उस समय अरब भूमि पर स्थित कई समूहों ने अमेरिकी अरब समुदाय में अपने लिए जगह बनाने और अपने विचारों को बढ़ावा देने और अमेरिका में अपनी गतिविधियों को जारी रखने की कोशिश की। उनमें से कुछ ने फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका के समर्थन से लेबनान के गठन का समर्थन किया, जबकि दूसरे लोगों ने इस विचार का विरोध किया और उन्होंने एक स्वतंत्र सीरिया बनाने पर जोर दिया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जिसने अमेरिकी अरब समुदाय का ध्यान आकर्षित किया वो फिलिस्तीन का मुद्दा था। फिलिस्तीन में फिलिस्तीनियों की नस्ल कुशी और उनका जबरन पलायन, पहले विश्व युद्ध के अंत में ज़ायनी आंदोलन 1917 में बाल्फोर घोषणा पत्र के कार्यान्वयन के लिए ब्रिटिश समर्थन प्राप्त करने और इसके कार्यान्वयन को उसके एजेंडे में शामिल कराने में सफल रहा, उसी समय से फिलिस्तीन का भविष्य अमेरिकी अरब समुदाय की मुख्य चिंता बन गई और अमेरिका में कई फिलिस्तीन समर्थक संगठनों, समूहों और आंदोलनों का गठन हुआ। इस राजनीतिक घटनाक्रम के साथ ही दुर्भाग्य से अमेरिकी अरबों के बीच अपनी मातृभूमि को समर्थन में असमंजस की स्थिति के दूसरे परिणाम भी सामने आए। पहले विश्व युद्ध की शुरुआत के साथ उन्हें धीरे धीरे महसूस हुआ कि वे अपने हमवतनों की प्रभावी ढंग से मदद नहीं कर सकते। इसके अलावा उनकी भौतिक सहायता से उस्मानी शासन के अधीन लोगों की समस्याओं को कम करने में कोई मदद नहीं मिली। उसके बाद से ही अमेरिकी अरब समुदाय ने नेताओं के माध्यम से अपने समुदाय के लोगों को अमेरिकी सेना में शामिल होने और उस्मानी शासन के खिलाफ लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। अमेरिका में कई लोग मानते हैं कि अमेरिकी समाज और उसके राजनीतिक क्षेत्र के साथ एकजुट होने और सहयोग करने के लिए अरबों का ये पहला गंभीर कदम था। यहाँ ये जानना उचित होगा कि राजनीतिक दृष्टि से अमेरिकी अरब समाज में तमाम कमजोरियों और उसके सामने मौजूद बाधाओं के बावजूद इसके रिकॉर्ड में कई सफलताएं हैं। कई अरब अमेरिकी संस्थान राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय हैं और वोट देने के लिए पंजीकृत हैं। इसके अलावा कार्यकारी पदों के लिए अरब राजनीतिक उम्मीदवारों की संख्या में वृद्धि हुई है। अमेरिकी समाज में ये भी धारणा है कि अरबों में राजनीतिक भूमिका निभाने और जोखिम उठाने का अधिक साहस नहीं है। कुल मिलाकर जब अरबों या अमेरिकी अरबों से संबंधित विशिष्ट राजनीतिक मुद्दे उठाए जाते हैं तो अरब समुदाय अधिक सफलता हासिल नहीं कर पाता है। इस सफलता की कमी का मुख्य कारण वो नकारात्मक छवि और शंका है जो अमेरिकी लोगों के मन में इस देश के अरबों के प्रति पाई जाती है। अमेरिकी अरबों के नकारात्मक दृष्टिकोण और रूढ़िवादी विचार, धर्म युद्ध की यादें, मीडिया द्वारा पेश की गई नकारात्मक छवि, अरबों के विरुद्ध भेदभाव और अरबों और मुसलमानों को दुश्मन के रूप में पेश किए जाने और विशेष रूप से फिलिस्तीनी मुद्दा इस शंका के मुख्य कारणों में से हैं। इस नकारात्मक छवि ने अमेरिकी अरबों और उनके समर्थक समूहों के राजनीतिक प्रभाव को बहुत महदूद कर दिया। दूसरे शब्दों में इस नकारात्मक छवि का इस्तेमाल अमेरिकी राजनीतिक क्षेत्र में अरबों को सीमित करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए सन 2000 में सीनेट चुनाव अभियान के लिए हिलेरी क्लिंटन को 1968 में, कांग्रेस चुनाव के लिए जोसेफ पी कैनेडी द्वितीय को, 1983 में मेयर चुनाव के लिए विल्सन गुड को और 1984 में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वॉल्टर मेंडेबेल को अरबों द्वारा दी गई वित्तीय सहायता को ये कहकर लौटा दिया गया था कि अरब पूर्ण अमेरिकी नहीं है। बेशक इसका प्रतीकात्मक उद्देश्य अमेरिकी अरबों को एक विदेशी समुदाय के रूप में पेश करना था। अमेरिकी राजनीति में अरबों को विदेश नीति के क्षेत्र से दूर रखने के लिए इसी पद्धति का उपयोग किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य ज़ायनी शासन से संबंधित मुद्दों से उन्हें दूर रखना होता है। अमेरिकी अरबों को राजनीतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया से दूर रखने के लिए इस प्रकार का राजनीतिक भेदभाव अमेरिकी अरब लॉबी और उससे जुड़े विभिन्न संगठनों की क्षमता और प्रभाव की कमी का मुख्य कारण है। 30 से अधिक अध्ययनों में ये दर्शाया गया है कि अमेरिकी अरब लॉबी इसराइली लॉबी की तुलना में बहुत कमज़ोर और अप्रभावी है। हालांकि अमेरिकी अरब लॉबी खुद को प्रभावशाली दिखाना पसंद करती है या कम से कम प्रभावशाली होने का दिखावा करती है। हालांकि तथ्य उपरोक्त 30 अध्ययनों के निष्कर्षों की पुष्टि करते हैं। कांग्रेस और संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति में इसराइल के कुछ समर्थक ज़ायनी लॉबी की शक्ति को कम करके दिखाने और यहां तक कि इसे अरब लॉबी के प्रभाव के बराबर दर्शाने का प्रयास करते हैं। सामान्य तौर पर कहा जा सकता है कि अमेरिका में अरब लॉबी सीरिया, इराक, लेबनान, फिलिस्तीन या सऊदी अरब से जुड़े किसी भी मुद्दे में प्रभाव डालने में सफल नहीं हो सकी है।